आज हम इसका आखिरी पेज पढ़ते हैं, पेज नंबर 18 से। जादू के इलाज की या जादू से मुतल्लिक आज आखिरी बातें शुरू करेंगे। नहमतुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बिश्रहली सद्री व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दम ज़रिया इलाज, इस किताब में से आज हम जादू के मौजू पर आखिरी सेशन करेंगे। पेज नंबर है 18। अभी तक जो बातें की हैं उसका खुलासा क्या है कि जादू हो जाए इससे पहले ही इंसान तैयारी कर ले, और ऐसी चीज़ें कि जिसमें एक इंसान जादू से पहले अपने असबाब कर ले, ये किया। फिर हमने दूसरी किस्म पढ़ी जादू हो जाने के बाद इसके इलाज के तरीके, ठीक है, जिस पे हमारा ज़्यादा वक्त लगा। और इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह 11 दुआएं सीखी हैं जो आप सब ने याद की हैं और करनी है इंशाल्लाह। आज हम तीसरी किस्म देखेंगे। पहली क्या थी? जादू होने से पहले। दूसरी ये थी कि जादू हो गया। अब क्या है तीसरी किस्म? जहां जादू का असर जाहिर हुआ है, इस जगह से या उज्व से, उज्व कहते हैं ऑर्गन को, जिस्म का वो हिस्सा जहां जादू का असर महसूस होता है, अगर मुमकिन हो तो हिजामत करवाए। हिजामत क्या है? हिजामा। हिजामा किसको कहते हैं? ब्लड निकालना, कपिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में। आज के दौर में काफ़ी लोग अब इस तरीके इलाज की तरफ आ रहे हैं। बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर सारा महीना कुछ सेल्स बनते हैं, कुछ टूटते हैं। जब हमारे जिस्म में मुख्तलिफ चीज़ें हो रही होती हैं ना, मसलन आप इसको ऐसे समझिए कि जब हम खाना पकाते हैं तो उसके बाद किचन में कुछ गंदगी आती है ना, सब्जी छिलका होता है ना, फिर इसी तरह से चावल धो रहे हैं तो कुछ चावल गिरते हैं। यानी ये एक सिंपल सी बात है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम के नतीजे में कुछ ना कुछ कचरा फैलता है। आप काम ना करें तो आपके इर्द गिर्द गंदगी नहीं होगी। अब हम आप क्या करते हैं, उस सारी गंदगी को बाद में समेट कर ट्रैश में फेंक देते हैं। उसको फेंक दिया, ख़त्म हो गई बात। अगर हम ना फेंकें, किचन भी वो गंदगी रहे तो क्या होगा? किचन गंदा होगा, शुरू में मैसी लगेगा, लेकिन अगर एक आधा दिन छोड़ दें तो वहाँ बदबू भी पैदा हो जाएगी। बस आप इस मिसाल को अपने जहन में रखें, और ये मिसाल हर चीज़ के ऊपर फिट होती है। जब हमारा जिस्म दिन में इतने काम करता है, क्या क्या काम करता है, ब्लड निकलता है, पंप करता है, फूड डाइजेस्ट होती है, हमारा नर्वस सिस्टम चलता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलता है, यानी जिस्म में तो एक अंदर हलचल मची हुई है। इतनी मशीनें अगर इकट्ठी दुनिया में काम करें तो कितनी आवाज़ें, कितना शोर, क्या कुछ हो। तो जब उन कामों के नतीजे में कुछ चीज़ें निकलती हैं, आप कह लीजिए कि रॉ मटेरियल बनता है या कुछ और है, तो उस सारी चीज़ों को खून लेकर दिल के रास्ते से गुजर कर फिर उसको साफ किया जाता है। किडनीज में चला जाता है तो पेशाब यानी यूरिनेट के जरिए से यूरिनेट करते हैं, पेशाब हुआ और वो वहाँ चला गया। इसी तरह फुजले के साथ निकलता है। बहुत सारी चीज़ें तो इन दो चीज़ों से निकल जाती हैं। इसके बावजूद हमारे खून में कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं कि जो जिस्म के अंदर नहीं होनी चाहिए, और जिसकी वजह से खून गाढ़ा होने लगता है, खून गंदा होने लगता है, उसका रंग बदलने लगता है। तो हिजामा करने वाले जो लोग होते हैं उनको इसका बहुत खूब अच्छी तरह पता होता है कि जिस्म की कौन सी रग, या आप देखते हैं कि हमारे जिस्म में डिफरेंट रगें होती हैं ना, आप में देखते हैं कुछ काली काली दिखती हैं, कुछ सुरख होती हैं। जो सुरख होती हैं वो साफ खून वाली होती हैं, उस पर कपिंग नहीं करेंगे कभी भी, आपका साफ खून नचड़ जाएगा। काली रगें होती हैं और ख़ास मखसूस रगें होती हैं उसके ऊपर। नबी वसल्लम के दौर में कैसे होता था, जोंक लगवाते थे, लीच, आपने नाम सुना होगा। नबी वसल्लम को मेराज के तोहफों में से ये तोहफा मिला था कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को एक ख़ास तरीके से तालीम दी थी। आप और मैं दुनिया में डॉक्टरों से सीखते हैं, अमेरिका ले जाओ, कनाडा ले जाओ, फ्रांस ले जाओ, तरीके इलाज के लिए मुख्तलिफ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस खूबसूरत तरीके से सिखाया था कि आप इन सारी चीज़ों को कहाँ सीखे, हिजामा का तोहफा मेराज के मौके पे मिला था। और मेराज क्या था ये आपको जानने के लिए, वैसे तो सबको ही पता है लेकिन इसकी डिटेल जानने के लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। सीरत के सिलसिले में हम बहुत डिटेल से मेराज का सफ़र पढ़ेंगे, और एक लेक्चर भी मौजूद है शब मेराज और रजब के मसाइल, तो उससे भी आप फ़ायदा उठाएं। लेकिन उस पर आपने अपनी उम्मत को ये तोहफा दिया था। तरीक़ेकार क्या होता है, वो डिफरेंट तरीके से होता है। ये है क्या? हिजामा, हिजामा, ठीक है, फासिद मादा निकलवाना, फासिद कहते हैं फसद, उर्दू में बोलते हैं फसाद फैल गया, ये बड़ी फसादी औरत है। तो जिस्म के अंदर कुछ चीज़ों की मौजूदगी जिस्म के निज़ाम में फसाद पैदा कर देती है, वरना गुज़श्ता अज़कार वगैरह ही इलाज के लिए काफ़ी हैं। अच्छा, पहले दौर में क्या करते थे, नबी सल्लम के दौर में जो मारूफ तरीका था, जोंके लगवाते थे। लीच एक कीड़ा होता है, छोटा सा पतला सा होता है, आप उसको जिस्म की उस रग को जहाँ से ब्लड निकालना है उसके ऊपर ऐसे रखें, तो वो अपनी टांगों से अपने पाँव, उसके ना छोटी 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 टांगे होती हैं, वो चिपक जाता है, थोड़ी देर बाद देखेंगे वो ना फूलना शुरू हो जाता है, गुब्बारे की तरह वो आपका ब्लड लेता है। जब वो फूल के आपको फील होता है, और जो लोग करते हैं ये तरीका उनको पता होता है, तो वो जब भर जाती है ना लीच, ये ऐसे जैसे सिरिंज लगा दी आपने, आज की जुबान में डॉक्टर सिरिंज लगा के आपका ब्लड लेना शुरू करता है, तो जब वो सिरिंज भर जाती है तो उसको निकालता है, तो वो लीच जब आपका खून निकाल लेती थी तो उसको निकाल के फिर इसी तरह जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर लगाई जाती थी। ठीक है, ये एक तरीका था उस दौर में। आज के दौर में जो मारूफ तरीका है, और वो उस दौर में भी होता था, कि जिस्म पे कट्स लगाए जाते हैं, मखसूस जगह होती हैं जहाँ रग है, इतना बारीक कट होता है कि उससे जख्म नहीं आएगा, और कहते हैं कि दर्द भी नहीं होती, एक हल्का सा एक एहसास होता है। तो वो जब हल्के हल्के कट्स लगाकर फिर उसके ऊपर कुछ शक्कर से होते हैं, कुछ खास टूल्स मिलते हैं, वो सेम समझ लीजिए कि आर्टिफिशियल लीच है, वो उसके ऊपर जब लगा के वैक्यूम किया जाता है और ऐसे ऐसे करते हैं तो ब्लड निकलता है। और आज के दौर में काफ़ी सारे लोगों ने ना सिर्फ ये कि जादू टूने का इलाज, बल्कि जिस्मानी बीमारियों का इलाज इससे किया है। जिस्म के हर हिस्से का हिजामा अलग होता है, तो बाज़ लोग तो कहते हैं कि इसको वैसे भी कर लेना चाहिए, बीमारी ना भी है तो वही बात है ना, कि गंदा खून निकलेगा तो उसकी फ्रेशनेस होगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी की जा सकती है। यहाँ भी एक आध सिस्टर्स हैं ऐसी जिनको हम जानते हैं कि वो हिजामा करती हैं। कभी आपको लगता है कि डॉक्टर से फ़ायदा ही नहीं हो रहा, इतनी दवाइयाँ खाई, दवाइयाँ छोड़ दें और हिजामा करवा के देखें, इंशाल्लाह आपको उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, फिर चौथी किस्म क्या है, तबई दवाएं, ये बड़ी अहम चीज़ है, नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट। कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ तिब्बी अदविया, तिब्बी के तिब से, यानी आर्टिफिशियल नहीं खाना, डिस्प्रिन नहीं खानी, एस्प्रिन नहीं खानी, कालपोल नहीं पीना, आपने वो क्या क्या, क्या नाम है दवाइयों के, ज़रा बोलिए तो सही, माशाल्लाह आपका इल्म तो मेरे से बहुत ज़्यादा होना है। कौन कौन सी गोलियों के नाम बोलते हैं जिसको जो आता है, पेन किलर, बोले बोले शाबाश, पेनाडोल, पैरासीटामोल, हैं और ट्राइम हैं जी, ये सारी नहीं खानी। ठीक है, ख़त्म हो गई बात। कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ तिब्बी अदवियात जो जड़ी बूटियों को मिलाकर तजुर्बे की बुनियाद पर तैयार की जाती हैं, भी मुफीद साबित हो सकती हैं, अगर इंसान पूरे यकीन, सिद्के दिल और लिल्लाहियत, लिल्लाहियत क्या होता है, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, अल्लाह के लिए, यानी जब हमारा क्रीड है ना कि अल्लाह ने इन चीज़ों में शिफा रखी है तो हम अल्लाह के लिए ये काम करेंगे तो फ़ायदा होगा, तो लिल्लाहियत के साथ इस्तेमाल करें, और अकीदा ये हो कि अल्लाह तबारक व ताला ही शिफा अता फरमाएगा तो अल्लाह ताला शिफा अता करते हैं। अगर हराम चीज़ से दवा तैयार ना की जाए तो इनसे फ़ायदा हासिल करने में कोई शरई कबाहत नहीं, शरई कबाहत का मतलब कोई हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह ताला के हुक्म से तबई इलाज मुफीद होते हैं, यानी फ़ायदा मंद होते हैं, मसलन शहद, हनी, कलवंजी यानी ब्लैक सीड्स, जमजम का पानी, ये तो हम सबको पता है, बारिश का पानी, फरमाने बारी ताला है सूरत कौफ की आयत नंबर 9, वनस्सलना मिनस समाई माम मुबारकन, और हमने आसमान से बाबरकत पानी बरसाया, और जैतून का तेल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जैतून खाओ, इसे बतौर तेल इस्तेमाल करो, क्योंकि ये बाबरकत दरख्त से है, और तजुर्बे और इस्तेमाल से ये बात साबित हो चुकी है कि ये बेहतरीन तेल है। फिर इसके अलावा तबई दवाइयों में से गुसल करना, साफ सुथरा रहना और खुशबू का इस्तेमाल भी शुमार किए जा सकते हैं। देखिए, अब ये जो चीज़ें अब हमने पढ़ी, क्या हमें इसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? और आज ये नेचुरल तरीका इलाज इतने आम हो रहे हैं कि आम इलाज से महंगी दवाइयाँ लोग बना रहे हैं। एक छोटी सी बात समझिए, चाहे वो आपकी पैरासीटामोल है, चाहे वो कोई चीज़ दूसरी है, कोई क्रीम है, कोई लिक्विड आप यूज़ करते हैं, कुछ इसकी बेस कोई ना कोई नेचुरल चीज़ ही होती है। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, आप सबको समझ आ जाएगा। एलोवेरा का नाम आपने सुना है शायद, स्किन केयर के अंदर या हैंड लोशन से लेकर फाउंडेशन से लेकर एलोवेरा का नाम अक्सर चीज़ों पे होता है। अब एलोवेरा क्या है, ये एक पौधा है, आपने नेचुरल देखा है असल में, आप पाकिस्तान से कोई लेके आए हुए थे, तो उसने मुझे दिखाया, इतनी सी डंडी थी, तो मैंने कहा इसको खोलें क्या, तो उन्होंने उसको इस तरह ऊपर से पकड़ के चीरा, फ्रेश जेल अंदर से निकली। पकड़े जेल को यूं करें, हाथ मुंह पे लगा लें। अब ये कितने की आई होगी एक डंडल, कुछ रुपए की, 10 रुपए की आई होगी। एलोवेरा जेल आप जब किसी भी कंपनी की बनी हुई लेंगे वो सबसे महंगी होगी, क्योंकि ये नेचुरल है। याद रखें हर चीज कुदरती चीजों से मिलके बनती है। अगर आज पैरास्टामोल खाते हैं कोई, तो ये कोई लोगों ने नहीं बनाई, ये अल्लाह ने बनाई। सारी बात का खुलासा ये है कि जितना प्योर रहेंगे, जितना नेचुरल चीजों पे रहेंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। फिर ये आखिरी जो बातें हुई ना कि साफ सुथरा रहना, गुसल करना, इस वीकेंड से पर मेरी किसी सिस्टर से बात हुई और इतनी तकलीफ में थी वो, यकीन करें उनकी आवाज से आंसू टपक रहे थे। समझ नहीं आता क्या है, पता नहीं क्या है, कोई असर है, जादू है, टूना है, क्या करूं। और वो माशाल्लाह चूंकि स्टूडेंट है, तो वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती कि जिससे सेहत तो मिलनी है कि नहीं मिलनी, लेकिन मन खराब हो। तो मैंने उनको ये बातें अपने ओन पे बताई थी कि देखिए आपका ये भी एक इलाज है कि आप उठे, शावर लें, अच्छे कपड़े पहने, शादी वाले कपड़े पहने घर में। कहती मेरा खाने को दिल नहीं करता, मेरा पीने को दिल नहीं करता, मेरा पहनने को नहीं दिल करता। मैंने कहा नहीं दिल करता, आप फिर भी करें। देखिए बीमार शख्स होता है ना, बीमार लगता है, अपने आप को फील करता है। जूं ही उठ के नहा धोकर कंघी करे तो ऐसे लगता है आधा बुखार चला गया। ये सब चीजें हमें अभी मिलती हैं, इंशाल्लाह अभी हम पढ़ने लगे हैं, आप खुद देखेंगे कि हमारे अपने प्यारे नबी के नेचुरल तरीका तालीम में ये सब कुछ कैसा था। ठीक है, तब ये जितनी बातें हमने ये 14-15 मिनट में सुनी, ये किसके फायदे की है? मेरे फायदे की है। मैं ना सुनती तो किसका नुकसान होता? मेरा नुकसान होता। आज आप देखिए कि हम इतनी मुश्किलात का शिकार हैं, कई जिस्मानी बीमारियां, कई रूहानी बीमारियां, कई डिप्रेशन। अब अगला टॉपिक हमारा जो शुरू होने वाला है, कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे नजरे बद। ये नजर क्या लगी हुई है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ आप खुलेंगे तो पढ़ेंगे। तो सारी बात का खुलासा कर देती हूँ, क्योंकि आज ये टॉपिक पूरा हो गया कि जादू बरहक है। नबी सल्लम पे भी जादू हुआ था, ताकि उम्मत को दिखाया जाए कि अगर कभी जादू हो जाए तो फिर उसके बाद क्या तरीका इलाज होगा उसका। और दूसरी बात यह कि जादू होने से पहले कुछ चीज़ें, अगर आप उन पे अमल करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस असर से महफूज रखता है। फिर उसके बाद अगर कभी हो गया तो फिर क्या करना है, दुआएं। याद रखिए ईमान सबसे कीमती चीज़ है। सच्चा ईमान अंदर आता है ना, तो आप ये चीज़ें नहीं देखेंगे। और आप ये चीज़ दुनिया में घूम फिर कर देखें, जहां ईमान नहीं वहां ये चीज़ें ज्यादा हैं। शिर्क की मौजूदगी में जादू का असर बहुत जल्दी होता है, कुफर की मौजूदगी में बड़ी जल्दी होता है, कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब पे जादू का असर बहुत जल्दी होता है, गंदी चीज़ें देखने वालों पे जादू का असर होता है, गंदी चीज़ें बोलने वाले, गंदी चीज़ें खाने वाले पे, और इस तरह की चीज़ें, और शराब और जो चीज़ें तबन भी अच्छी नहीं, और इस्लाम ने भी उसको मना किया। तो इन सब चीज़ों से बचाकर हम अपने ऊपर एहसान कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर खुदा न खास्ता हो गया, हो जाता है, लोग ये सवाल करते हैं, और आपके जहन में भी ये सवाल हो सकता है, हम ये सब कुछ भी करते हैं इसके बावजूद भी हो जाता जादू, फिर तो आप ये समझ लीजिए कि कभी कभी दरवाजे बंद किए होते हैं, चोर फिर भी आ जाता है। ये आजमाइश होती है, ये इम्तिहान होता है। इससे ये नहीं मुराद होती कि हम अपने आप को इन चीज़ों से दूर कर लें, बल्कि इससे मुराद क्या होता है कि हम अपने आप को मजीद इन चीज़ों में परखें, और अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा हमें किसी मुश्किल में डालकर उससे निकालना चाहता है। ठीक है, और आखिरी हिस्सा जो आज ही हमने पढ़ा, तीसरी किस्म क्या है, हिजामा। इसके लिए कोशिश करके इख्तमाम किया जा सकता है, औरतों से ही जामा करवा सकती हैं, मर्द मर्दों से ही जामा करवा सकते हैं। और उसके बाद अगली चीज क्या है, नेचुरल तरीका इलाज जिस हद तक मुमकिन। अब देखिए मैंने आपको एलोवेरा की मिसाल दी, तो अब आप एक फ्रेश पौधे से उतरा हुआ एलोवेरा लेंगे, कोई केमिकल उसमें होगा, कोई प्रिजर्वेटिव होगा, कोई उसके अंदर कोई ऐसी खुशबू उन्होंने डाल दी कि जिससे आपको रिएक्शन हो, और सबसे बड़ी बात है कीमत 10 गुना ज्यादा हो गई, तो आप नेचुरल क्यों नहीं ले लेते हैं? बात समझ गए, कुदरती चीज लें। आप देखिए कभी कॉस्मेटिक्स के ऊपर लिखा था हनी विद हनी विटामिन सी फुला, तो नेचुरल क्यों नहीं ले लेते? तो कुदरती चीजों का एक फायदा ये होता है कि उससे रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, तो आखिर में एक चीज बारिश के पानी की देखी, बारिश के पानी में कभी हाथ गीले करके तो देखे। पहले दौर में बच्चे नहाते थे बारिश में, आई डोंट नो यहाँ के बच्चे नहाते हैं कि नहीं, वजह क्यों नहीं, मौसम को क्या, कुछ भी नहीं है। आप अपने छोटे बच्चों को घर के बैक यार्ड में कोई ऐसी जगह पे जहां पर्दे का इस्तेमाल है, आप उनको बारिश में कपड़ों समेत नहाए, आप ही नहाए, क्या होगा बाद में जाकर आप शावर ले लें दोबारा, नमक के थोड़ी बने हैं जो पिघल जाएंगे। या बर्फ के तो नहीं बने हुए ना, करके देखे, बीमार हुए उसको पकड़ के बारिश में बिठा दे, ठीक हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता, ये मौसम का असर कुछ नहीं। और अभी तो गर्मी है, गर्मी की बारिश तो बल्कि ज्यादा जिस्म पर असर डालती है। ठीक है, तो कोई सवाल जो बात अभी तक हुई उसके बारे में आप लोगों के जहन में है? जी आप
जी,
पूछिए।
ये ऊपर पड़ा है कि जहाँ जादू का असर जाहिर हुआ उस जगह से या उस दास से आप हजामत आ सकते हैं, लेकिन ये कैसे पता चले किस जगह पर?
मसलन आप देखिए, ये जो इन्होंने पूछा है कि जिस जगह पे जादू का असर हुआ है वहां हिजामा कराएं। किसी के सर में दर्द रहता है, किसी को लगता है मेरी टांग खिंच गई, किसी के पेट में दर्द होता है, जैसे हर डिफरेंट बंदा अपनी डिफरेंट फीलिंग बताता है। तो जिस्म के जिस हिस्से पे असर है उस हिस्से पे हिजामा करवाएं, यानी पता चल जाता है कमर का दर्द है, कमर पे हो सकता है, टांग है, बाजू है, हाथ है, और ओवरऑल अगर तबीयत घबराहट वाली है तो फिर वो उनको पता होता है, जो लोग ये काम करते हैं उनको अंदाजा होता है इस चीज का।
ये
जी
जादू जिस्म के अज़ाओं पर होता है
जी
क्या, या
बिल्कुल, अज़ा पे होता
फिर
है, जहन पे है, सोच पे किया जा सकता है, जज्बात पे किया जा सकता है। इसके ऊपर एक पूरा हमारा सेशन है मैजिक ए टू जी, ये ऐप के अंदर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग उसको शुरू से सुने, एक ग्रुप में मैं आजकल देख रही हूँ कि वो लोग हमारा प्ले कर रहे हैं, तो शुरू से चल रहा है वो। तो वो इस इन चीज़ों को सुनने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है कि आप कम अज़ कम केयरफुल तो हो जाते हैं ना। जी किसी को
और
अगर हेल्प चाहिए हो तो हमारे पास कांटेक्ट हैं एक दो लोगों के, आप लोग करवा
कमर
सकते
में
हैं।
भी कर ये 3-4 दुआएं हैं, तो जे हम जब किसी पे दम का था तो एक ही दुआ पढ़नी होती है, ये सारी पढ़नी होती है?
देखिए ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, हालात और मवाके के मुताबिक। आप एक दवा खा लें, जैसे आपको खुद भी तो अंदाजा होता है ना, कभी एक गोली खाते हैं, कभी दो तीन खानी पड़ जाती हैं, तो जिस तरह से भी होगा उस हालात दो सारी पढ़ लें, यकीन के साथ पढ़ना लाजिम है। मुझे किसी ने
जी
बताया, जिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो इस मुश्किल का शिकार थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा है कि सूरत बकरा पढ़नी है, और गालिबन सुबह से लेकर फजर से लेकर मगरिब तक नॉन स्टॉप पढ़नी है, या एक दुआ थी शायद कोई दूसरी जो उन्होंने उनसे पूछी थी। तो मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि बीच में रुकना नहीं, सिर्फ पता नहीं क्या जो एक दो छोटे से गैप्स बताए हुए थे। तो ये सारी बात का खुलासा ये है, वो काम करें जो आपको करने में मजा भी आए, और उस काम के बाद आप अपने अंदर कोई इस तरह का बोझ ना तबीयत पर महसूस करें। ठीक है, तो इन चीजों पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बस आप आजमा के देखिए जिस चीज से आपको शिफा, और जितना आपका अपना इंक्लाइनेशन होगा, जितना आप खुद अपने उन चीजों पर जमे होंगे, उतना इंशाल्लाह आपको उससे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जादू का टॉपिक पूरा हुआ। सुभान रब्बी का रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।